अगले दिन सुबह दोनों घरों में पूजा रखी गई थी और इसके साथ ही शादी की रस्मों का शुभारंभ हो गया था। कुछ खास रस्में तो नहीं थी, पर मेहमानों से भरे घर में नाच गाने हंसी मजाक के बीच वक्त कब निकल गया था कुछ पता ही नहीं चला। पूजा में शिखा और अनुपमा जी भी आए थे, जो रात को वापस गए थे, जबकि माधव पूजा के बाद ही काम से निकल गया था। आज हल्दी थी। पीले रंग का लहंगा पहने, फूलों का श्रृंगार किए अर्पिता बेहद प्यारी लग रही थी और पहले ही अपनी सेल्फी निशांत को भेज भी चुकी थी। वहां निशांत भी पीले कुर्ते और सफेद पजामा में अपनी हल्दी के लिए बिल्कुल तैयार था। दोनों तरफ हल्दी की रस्म शुरू हुई। अप्पू को राधिका ने अच्छे से समझाया था कि आज कोई शरारत नहीं करनी, इसलिए वो एकदम शरीफ बच्ची बनी बैठी सबकी हंसी ठिठोली छेड़छाड़ खामोशी से सुनते हुए हल्दी लगवा रही थी। महिलाओं का फंक्शन था तो कोई भी मर्द वहां नहीं था। ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे, डांस भी हो रहा था। बहुत आराम से अर्पिता को हल्दी लगाई गई, पर अंत में उसकी दोनों बड़ी बहनें लबों पर शरारती मुस्कान सजाए पहुंच गईं अपना पुराना बदला लेने। बेचारी अप्पू को भागने तक का मौका न मिला। अपनी बड़ी बहनों द्वारा धरे दबोचे जाने पर वो बस छटपटा कर रह गई। दोनों ने हल्दी रगड़ रगड़ कर उसका रंग निखारा और इसी बीच मौका पाकर अर्पिता ने भी दोनों पर धावा बोल दिया। सारी समझाइशें गईं तेल लेने, अभी तो अपना बदला पूरा करना था। देखते देखते वहां का पूरा मंजर ही बदल गया था। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की हालत खराब कर दी थी। उनके चेहरे और शरीर के साथ आसपास फर्श भी हल्दी से रंग चुकी थी। राधिका ने अपना सर पकड़ लिया। कितना ही समझाओ कोई फायदा ही नहीं, सोचते हुए उसने बेबसी व अफसोस से अपना सर हिला दिया। दूसरे तरफ कानपुर में भी पहले तो शांति से निशांत को हल्दी लगाई गई। जब सब लेडीज ने उसे हल्दी लगा दिया तो हमारे अन्वय महाराज शर्ट की बाजुओं को ऊपर की ओर चढ़ाते मैदान में उतर आए। साले साहब, नाजुक हथेलियों से बहुत हल्दी लगवा ली, अब जरा इन कड़क हाथों का भी मजा लीजिए। ये सुनकर निशांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। अन्वय ने कुटिलता से मुस्कुराकर और आसपास नजरें घुमाते हुए अपने साथियों को भी बुला लिया। ब्रो, भैया, आप दोनों भी आइए, जरा अपने प्यारे छोटे साले और भाई को अच्छे से हल्दी लगाइए। दोनों उसका मतलब समझकर मुस्कुराने लगे थे, जबकि निशांत उसके इरादे भांपकर तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पर इससे पहले कि वो भाग पाता, पीछे से अंतरा और पल्लवी ने उसे दबोचकर वापस बिठा दिया। कहाँ चले बच्चू, अब तो असली मजा आएगा। सबकी शादियों में खूब मजे लिए, अब हम सब मिलकर तुम्हारे मजे लेंगे। निशांत को अपने पुराने कर्म लौटकर याद आए थे और आज शिलबत से अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। भागने की कोशिश अब भी पूरी थी, पर अन्वय उस पर हमला कर चुका था। उसके बाद जो निशांत चीखा, सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। दृशांत और अक्षय ने तो रस्म निभाते हुए उसे जरा सी हल्दी लगाई थी, पर अन्वय ने अपनी शैतानों की टोली को बुला लिया था। साथ मिली थी अंतरा और पल्लवी, और सबने मिलकर जो हालत की थी निशांत की, वो देखने लायक थी। कुर्ता शरीर से अलग हो चुका था, मुंह, कान, बाल, शरीर सब हल्दी से सना था। बेचारा पहचानने में नहीं आ रहा था। मामू, येल्लो मंकी बन गए, अयान निशांत को देखकर ताली बजाते हुए खिलखिलाया तो बाकी चारों भी उसके साथ हो लिए। बड़ों के ठहाकों की आवाज भी बुलंद हुई और निशांत ने रोतलूसा चेहरा बना लिया। ये आप सबने ठीक नहीं किया, मुझे हल्दी लगने के बाद अप्पू को फोटो भेजनी थी, पर आपने मुझे उसे मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। आप सब बहुत बुरे हैं। निशांत बच्चों जैसे मुंह फुलाए पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया। अन्वय ने अपने दोनों हथेलियों को ऊपर को उठाया तो एक तरफ से अंतरा ने तो दूसरे तरफ से पल्लवी ने उसकी हथेली से अपनी हथेली टकराई और तीनों ठहाके मारकर हंस पड़े। सारे बच्चे भी उनसे लिपट गए। अक्षय, आहाना और दृशांत ने पहले उन्हें देखा, फिर एक दूसरे को देखते हुए सर हिला दिया। कैसी रही हल्दी की रस्म? बस पूछिए मत, वो नज़ारा सोचकर ही राधिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। माधव राधिका का ये रिएक्शन देखकर चौंक गया। क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? गलत क्या होना था, सब ठीक ही था। शांति से हल्दी की रस्म पूरी होने वाली थी कि तीनों के अंदर शैतानों की आत्मा घुस गई और उसके बाद उन्होंने जो हंगामा मचाया है, ऐसे पकड़ पकड़ कर एक दूसरे की हल्दी लगाई, दुश्मनों जैसे एक दूसरे पर चिल्लाई, अपना तो हुलिया खराब किया है, कपड़े भी खराब किए और घर का जो हाल किया था बस पूछिए मत। साफ करने में नानी याद आ गई मुझे और उस पर अप्पू मैडम मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे मनाने में एक घंटा अलग लगा, आज तो मैं बुरी तरह थक गई। राधिका माधव की आगोश में सिमट गई। माधव उसके हवा में लहराते खुले बिखरे बालों को अपनी हथेली से सहलाते हुए उस दृश्य की कल्पना करके मुस्कुरा दिया। आपको किसी ने नहीं लगाया? माधव ने पल भर ठहरते हुए सवाल किया। राधिका उसके सीने से सर बाहर निकाले आंखें बड़ी बड़ी किए उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे क्यों लगाएगा? माधव लापरवाही से कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा दिया। यूं ही हल्दी से रंग निखर जाता है आपका, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, और जब आपकी तीनों बहनें मस्ती कर रही थी तो आपको भी उनमें शामिल हो जाना चाहिए था। अगर मैं भी उनके बीच शामिल हो जाती तो उन्हें कौन रोकता, कौन सब संभालता? बात तो सही कही आपने, पर कभी कभी जिम्मेदारियों को कुछ लम्हों के लिए दरकिनार करके अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई बुराई तो नहीं। माधव प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी बात सुनकर राधिका के जहन में कुछ पुरानी बातें उभरी और चेहरे के भाव बिगड़ गए। अपनी शादी में खूब हल्दी लगाई थी मैंने, बाद में छुड़ाने में कितनी मेहनत लगी थी, तभी कान पकड़े थे मैंने। ये दोबारा जिंदगी में कभी हल्दी नहीं लगवाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। आज भी कितनी मुश्किल से खुद को बचाया, वरना वो तीनों शैतान मिलकर मुझे हल्दी से नहला देती। नाक से कोड़ते हुए राधिका ने अजीब सा मुंह बना लिया। माधव को वो इतनी क्यूट लगी कि उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके चेहरे को चूम लिया। बड़ा रोमांस सूझ रहा है आज आपको। राधिका उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को लपेटते हुए बड़ी ही अदा से मुस्कुराई। माधव ने उसकी कमर को थामते हुए उसे उठाकर बगल में रखे टेबल पर बिठा दिया और उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कान में सरगोशी की। क्या करूं, आप लगती ही इतनी प्यारी है कि मैं खुद को चाहकर भी रोक नहीं पाता। माधव की तपती बेचैन सांसों ने राधिका की गर्दन और गाल को स्पर्श किया। राधिका मचलते हुए उसकी बाहों में सिमट गई, जिसने माधव की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। अगले ही पल उसने राधिका को खुद से दूर कर दिए और अपने बहकते जज्बातों को संयमित करते हुए अपना चेहरा फेर लिया। अब मुझे चलना चाहिए, यही शब्द निकले थे उसके लबों से, और इसके लिए खुद से कितना लड़ना पड़ा था उसे, बस वही जानता था। राधिका जो अचानक उसके यूं दूर होने से चौंक गई थी, अब आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से उसे देखने लगी। अचानक क्यों, मतलब अभी तो आए ही हैं और अब जाना चाहते हैं, कुछ वक्त भी मेरे साथ नहीं बिताएंगे। माधव जो उससे फेर कर खड़ा था, मोहब्बत की कशिश निगाहों में भरते हुए मुस्कुराया। अब तो सारी जिंदगी ही आपके साथ बितानी है राधिका, पर अभी मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। इतने दिनों की दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, आदत सी हो गई है आपकी नजदीकियों की, कहीं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। माधव ने सामान्य अंदाज में ये बात कही और साथ ही सर्द निगाहों से उसे देखते हुए आह निकली उसके लबों से। उसकी बातों के पीछे का अर्थ समझते हुए राधिका के कान जल उठे और सकपकाते हुए उसने उस पर से निगाहें फेर ली। माधव उसे यूं शर्माते देखकर हल्के से हंस दिया तो राधिका की पलकें लरजते हुए हौले से उठी और कातर निगाहें माधव की निगाहों से जा टकराईं। उन गहरी निगाहों में जुदाई की तड़प और मिलन की बेकरारी झलक रही थी, पर भावनाओं पर प्रेम और धैर्य का अंकुश लगा था और उन बहकते जज्बातों को संयमित किया जा चुका था। राधिका हौले से मुस्कुराई, प्रेम का ये रूप पहली बार देख रही थी। आप चाहे भी तो मेरी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे लबों पर बिखरी मुस्कान है, आंखों में आए आंसुओं की वजह नहीं बन सकते आप, कभी भी नहीं।
इतना विश्वास करती है मुझ पर? माधव ने खोए स्वर में सवाल किया, निगाहें अपलक उसे तक रही थीं। उसका सवाल सुनकर राधिका के लब कुछ और फैले। अपने बाबा के बाद आप पहले मर्द हैं जिन पर विश्वास किया है मैंने। यही विश्वास हमारे रिश्ते की नींव है। इसी विश्वास के सहारे आपका हाथ थामकर आपके संग जिंदगी के इस मुश्किल सफर को तय करने निकली हूँ। ये विश्वास ही है कि खुद को पूरी तरह से आपको समर्पित कर चुकी हूँ, और इस विश्वास पर मुझे विश्वास है आप कभी मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, कभी भी नहीं। माधव ने कोमल भावुक स्वर में कहा और राधिका को अपने सीने से लगाते हुए अपनी बाहों में भर लिया। राधिका भी बेझिझक उसकी पनाहों में समा गई। पता है राधिका, ये बेकरारी वाले एहसास सिर्फ आपको देखकर ही बेकाबू होते हैं। आपकी नज़दीकियों का इतना गहरा असर होता है मुझ पर कि अपनी भावनाओं पर संयम खोने लगता हूँ। जबकि सुमन के साथ इतने महीने बिताए पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, उसके पास होने पर भी कभी मन में कोई भावना ही नहीं आई, दिल बगावत पर नहीं उतरा, उसकी करीबियों में कभी वो नशा नहीं हुआ कि मैं बहक जाऊं, बस पति के रूप में बाकी जिम्मेदारियों के साथ उस जिम्मेदारी को भी निभाता रहा। पर आपके साथ सब कुछ अलग सा है। आपके इस रूप से मेरी मुलाकात आपके मेरी जिंदगी में आने के बाद हुई है और अब एहसास होता है मुझे कि कितना अधूरा था मैं आपके बिना। माधव ने आज बड़े वक्त बाद सुमन का जिक्र किया था। इनफैक्ट शादी के बाद शायद दूसरी बार ही था जब राधिका के सामने उसने सुमन से जुड़ी कोई बात कही थी, और आज राधिका के मन में कोई जलन, इनसिक्योरिटी या चिढ़ के भाव नहीं आए थे, बल्कि लबों पर सौम्य से मुस्कान बिखर गई थी। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, दिल इन एहसासों को उस खास इंसान के लिए सहेज कर रखता है। उस इंसान की शख्सियत में ये असर होता है कि मन में बसे जज्बातों को बाहर आने पर मजबूर कर दे। उस खास शख्स को देखकर ही दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, उसकी करीबियों में प्यार का नशा समाया होता है जो दिल को बेकरारी से भरती है और जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। आपकी मोहब्बत मैं थी, इसलिए प्रेम से जुड़े इन सभी अनुभूतियों पर भी मेरा अधिकार था, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे मन में आप बसी थी तो उसने मुझ पर अधिकार भी सिर्फ आपको दिया था। इसलिए अजय का छूना गंदा लगता था मुझे, जबकि आपका स्पर्श पाकर मेरा मन खिल उठता है। वजह थी कि मेरा दिल नहीं अपना सका था उसे, और जो दिल के लिए बेगाना हो उसके साथ शारीरिक रिश्ता मजबूरी होता है, चाहत नहीं। ठीक कह रही हैं आप, माधव ने मुस्कुराकर उसकी बात पर सहमति जाहिर की, फिर पल भर ठहरते हुए बोला, राधिका कल आप बिल्कुल वैसे ही मेहंदी लगवाइएगा और उसमें मेरा नाम लिखवाइएगा जैसे शादी में लगवाई थी। माधव की ये फरमाइशी इच्छा सुनकर राधिका चौंक गई। मैं दुल्हन थोड़ी ना हूँ, और अगर मैं मेहंदी लगाकर बैठ जाऊंगी तो बाकी काम कौन देखेगा। मैं हूं ना काम देखने के लिए, आप मेहंदी लगवा लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपकी मेहंदी रची हथेली पर अपना नाम देखकर। मेहंदी से उठती वो भीनी भीनी सी खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है। इतने प्यार से वो आग्रह कर रहा था कि राधिका उसे इनकार ना कर सकी। हामी भरते हुए वापस उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने अपने दिल पर हमेशा के लिए आपका नाम लिख दिया। मेरा रोम रोम आपके प्रेम की खुशबू से महकता, और आप मुझे अपनी हथेली पर अपना नाम लिखवाने कह रहे हैं। मेहंदी की खुशबू प्यारी है आपको? राधिका ने हल्की नाराजगी और चिर भरे अंदाज में ये बात कही थी, पर माधव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा।